مختصر ایک بات یہ کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ تو رکھ ہی رہے ہیں، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے ایک مسئلہ. اور یہاں پہ میں جنرل ایک بات تکلیف کے بارے میں سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ تکلیف کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا مرجے ہر مسئلے میں فقط اسی کی بات کو آپ مانیں. تکلیف دو کشتیوں میں پیر رکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ آدھی بات ایک کی مانیں آدھی بات دوسرے کی مانیں، جو بہت لمبی بات ہو جائے گی اس کو میں اور شارٹ کر رہا ہوں. تو تکلیف کا مطلب یہ کہ جو آپ کے مرجے کا فتوا ہے اسے آپ قبول کریں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں. لیکن اگر کسی دوسرے مرجے کا فتوا آپ کے مرجے سے زیادہ سخت ہے، یہ شریعت میں میں نے سلینگ لینگویج کا لفظ استعمال کیا، شریعت میں یہ لفظ کہنا کہ فلا مرجے کا مسئلہ سخت ہے فلا کا نرم، یہ طرح کی سلینگ لینگویج غلط ہے. کوئی سخت کوئی نرم مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہر مرجے اپنے حساب سے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہوتا ہے. لیکن عام لوگوں کی سمجھ میں بات بہت آسانی سے آ جائے اس لیے میں نے یہ لفظ سخت استعمال کیا. ذرا سی پالش لینگویج میں اس کو کہا جائے گا کہ اگر آپ کے مرجے سے کا جو فتوا دوسرے مرجے کا فتوا اس کے مقابلے میں احتیاط کے زیادہ قریب، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ اپنے مرجے کو چھوڑ کر دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں. اب میں ذرا سا بات لمبی کر گیا، شاید ابھی آپ سمجھ بھی نہ پائے ہوں کہ میں نے کیا کہا. اپنے مرجے ہی کو فالو کرنا ہے، دو کشتیوں میں پیر نہیں رکھنا. لیکن اگر دوسرے مرجے کا فتوا احتیاط والا ہے یا زیادہ سخت ہے تو اس میں آپ کو یہ آپشن. ایک بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، وہاں تک جب تک نہیں پہنچوں گا آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں ہیں. نمبر دو، یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوگی اور خالی نہیں ہوگی، ذہن میں کنفیوژن کو بڑھا دینے والی بات ہو، اور خالی کنفیوژن ہی نہیں بڑھے گا، اینٹی مرجعیت لوگوں کو ایک نیا ٹول بھی ہاتھ آ جائے گا. سب مجھے پتا، لیکن جو اینٹی مرجعیت ہے وہ تو اینٹی مرجعیت رہیں گے ہی، چاہے ہم کچھ کہیں کہ نہ کہیں. جو بیچارے مراجع کو فالو کر رہے ہیں ان کو تو ایک مسئلہ ان کی معلومات کے لیے پتا چلے. اور وہ یہ کہ مالی واجبات کے اندر، مالی واجبات اس کے اندر ایک چیز کا چانس بہت دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی کسی مرجع کے فرق کو فالو کر رہے ہیں، تکلیف کر رہے ہیں، تو آپ ان کی کتاب دیکھیں گے، مالی واجبات میں قنوت ہے، زکات ہے، کفارے ہیں، فدیہ ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں مجمع پر خاصا بھروسہ کرنے میں بات کر رہا ہوں کہ سب چیزیں لوگ جانتے ہیں. مالی واجبات یہ ویلڈ فقہی مسئلہ ہے کہ یہ بالکل ممکن کہ جو آج آپ کے مرجع کا فتوا ہے اس کے حساب سے آپ نے زکات دی، اس کے حساب سے آپ نے خمس دیا، اس کے حساب سے آپ نے فطرہ دیا. رمضان کے حوالے سے فطرہ سب سے پہلے یاد آئے گا. آپ نے اس کے بعد سے روزہ نہ رکھنے کا کفارہ یا فدیہ دیا. لیکن اگر بعد میں کوئی اور مرضی آیا اور ایک نارمل انسان کی زندگی میں دو سے تین مراجع کا زمانہ وہ دیکھتا، کبھی کبھار چھ یا سات مرجع بھی آ سکتے ہیں. جب بالغ ہوئے تو کوئی اور مرجع تھا، دس سال بعد ان کا انتقال ہوا، دوسرا مرجع آ گیا، دوسرا مرجع پھر دو سال بعد انتقال کر گیا، تیسرا مرجع آ گیا. تو اب اگر اس وقت جو آپ عمل کر رہے ہیں بالکل ٹھیک عمل کر رہے ہیں، چار دن کی تکلیف میں وہ یہی گئے، لیکن اس کے چانسز ہیں، یہ بالکل ایک ویلڈ مسئلہ کہ بعد میں کوئی دوسرا مرضی آیا ان کا فتوا اگر الگ ہوا، تو اب یہاں پہ آپ کہیں گے کامن سینس کی بات ہے، ان کا فتوا الگ ہے، جس دن سے وہ آئیں گے اس دن سے ہم ان کے فتوے کو مانیں گے. نہیں، اس کے بھی چانسز ہیں کہ ان کا نیا الگ فتوا بھی ہوا، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہیں کہ اس سے پہلے اگر تم چاہے کسی اور کی تکلیف میں تھے، اس سے ہٹ کر خمس کی زکات دی ہے، تو اس کو دوبارہ ادا کر. چانسز ہیں. اب اینٹی مرجعیت لوگ چہروں کے مسکراہٹ آئی ہوگی، او ہو یہ بھی مولانا نے بہت اچھا ہمیں اسکول دیا ہے مرجعیت کے خلاف بات کرنے کہ دیکھیے آج ہم مرجع کے مطابق عمل کر رہے ہیں، پھر بھی کیا گارنٹی کہ یہی مسئلہ صحیح رہے گا، ہو سکتا ہے دس سال بعد بدل جائے. اب اس کی फिलोसफी वगैरह तो बहुत लंबी, जो लो सिर्फ टू द पॉइंट बात चाहते हैं कि मौलाना हमें ना किसी मर्जी से इख्तलाफ है ना शरीयत, हमें ये बताइए हमें क्या करना है, ना खाली खून के लिए तकलीर कर रहा हूं। और वो ये कि इसलिए माली वाली बात है, अगर आप जरा सी एहतियात वॉलेंटियरी कर, शरीयत नहीं कहती कि जो आपका मर्जी कह रहा है उससे हटकर, ये चांसेस जहन में रखते हुए कि बाद का मर्जी इसको चेंज ना कर दे, आप उसके मसले को भी शामिल कर ले तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि आपका इस एहतियात में कोई नुकसान तो नहीं, एक सेफ साइड हो। मैं एक मिसाल इसकी दे दूं, मुझे याद है 94 खानागर में अकेले जाती रात के 11:30 बजे वहां तकरीर शुरू होती थी, 1:30 बजे खत्म होती, और वो तकरीर खत्म करने के बाद जो नौजवान भागे भागे गुसलखाने गए, वो मैय वाला गुसलखाना या अपने घरों का गुसलखाना, खानागर की जबान में तो गुसलखाने का मतलब होता है जहां पे मैयत को गुसल दे, और जाके फौरन गुसल दोबारा की, क्यों मरूम आ रहा है, कोई का एक फतवा था कि जब आदमी पे गुसल वाजिब होता, और यही फतवा आ रहा है सिस्तानी का भी, जब गुसल वाजिब होता तो दो हिस्सों में जिस्म को तकसीम करें, पहले सारों गर्दन धोए फिर नीचे का पूरा जिस्म, लेकिन बहुत सारे दूसरे मरहले का फतवा ये कि गुसल दो हिस्सों में नहीं होता, तीन में होता, पहले सारों गर्दन धोएंगे फिर राइट साइड धोएंगे फिर लेफ्ट साइड, अगर आपने सारी बॉडी एक साथ धोई, गुसल वाजिब की बात हो रही तो वो गुसल आपका गलत है, बातिल है, इनवैलिड है, आप नजर नमाज भी गलत है, रोजा भी गलत। अब ये इमाम खुमैनी का ये फतवा था, आगा खामेनेई का आज भी ये फतवा है, और 94 खानागर के जो मोमिनीन थे उनमें एक नाम आगा रूहानी का था, आगा रूहानी जो हमारे मराजी में से एक मस्जिद, बहुत कम उनको 2 साल मिले, आगा गुलफायकानी के बाद और आगा सिस्तानी से पहले, उनका यह फतवा था जो आगा खुमैनी वाला है कि दो हिस्सों में गुसल नहीं चलता, सारों गर्दन धोए फिर राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, अगर आप सारों गर्दन के बाद सारी बॉडी एक साथ धो ली तो आगा खुई क्या वैलिड है, आगा सिस्तानी क्या वैलिड, आगा रूहानी क्या इनवैलिड, तो आपका गुसल नहीं हुआ, आप नजीस हैं, आप रोजा नहीं रख सकते। अब आगा रूहानी की तकलीफ को पहले ही साल था रमजान के, इसी तरह मैंने मसाला बताया 90% नौजवान जो मजमे में बैठे वो आगा खुई के तरीके से गुसल करते चले आ रहे थे, और आगा खुई की मर्जी इसमें किसको शक, आगा खुई के इसमें किसको शक, आगा खुई के फकरी होने में किसको शक, मगर जिनकी तकलीर अब वाजिब हुई है उनका फतवा देखना पड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हाँ अब तक जो गुसल आपने किए उस मर्जी के हिसाब से ठीक है तो ठीक, लेकिन क्योंकि अब मेरे फतवे में गलत है इस मौके पर अब इस वक्त रात के 1:30 बजे आप भेजे, और अभी जो फजर के वक्त आपको रोजा रखना है तो अगर वो कुछ किए वगैरह रख लिया तो आपका रोजा गलत। वो जो फिर नौजवान वहां से भागे थे घर वाले भी परेशान हो गए थे, ये वो जमाना जब खानागर के बुजुर्ग अक्सर मुझसे नाराज रहते कि रोजाना कोई नई चीज लेके आ जाते हैं, हमारे नौजवानों को गुमराह कर देते कि देखिए लाइन लगी है घर के गुसल खाने पर, उस वक्त घर में एक ही गुसल खाना होता था, बल्कि जुमा हाउस वगैरह बिल्डिंगों में तो पूरे फ्लोर के ऊपर गुसल खाना होता था। तो अब मैं बात को क्यों इधर उधर कह रहा हूं, तो खुलासा ये चांस है और ऐसी मिसालें आ गई। अब आइए मैं ये सारी बातें आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, एक बहुत अहम मसाला बताना, ये तो फिर भी वुजू और गुसल की गलती, जो जिस्मानी इबादत है माली इबादत नहीं। जिस्मानी इबादत में तो ये होता कि जिस मर्जी के जमाने में आपने अमल किया वो सही माना जाए, आज से अपना अमल चेंज करें। माली इबादत में होता है कि नहीं, आज से नहीं, पीछे कभी शायद आपको जो एरियर है वो देना पड़े। अब आइए एक मतलब, और मैं इसीलिए इसमें कोई मर्जी का नाम नहीं ले रहा, बीमार आदमी के लिए रोजा माफ है, और बीमार की दो कैटेगरी, एक बीमार के लिए माफ है, एक बीमार के लिए हराम। जिसके लिए रोजा माफ है वो अगर रोजा रख ले जहमत उठा के तो उसका रोजा सही मान लिया जाएगा, तुम पर वाजिब नहीं, तुम एक्सेंटिव रख लिया तो ठीक। लेकिन वो बीमार आदमी जिसके लिए रोजा हराम है, वो अगर रोजा रख भी ले किसी तरह तकलीफ उठा तो रोजा उसका सही नहीं माना जाएगा, उल्टा वो गुनाहगार भी होगा और इस रोजे के कजा भी करना। बीमारों की दो कैटेगरी, इस वक्त हमें इस तफसील में नहीं जाना कि हराम वाले कौन लोग हैं और वो बीमार कौन है जिनपे हराम नहीं है लेकिन एक माफी इस्लाम ने दी। मुसाफिरत वाला आदमी पहली कैटेगरी में आता है जिसके लिए रोजा हराम है। ये नहीं है कि रोजा माफ है लेकिन अगर तकलीफ उठा के रख लो तो अल्लाह रोजा कबूल कर देगा, नहीं, ये हराम वाली कैटेगरी में। लेकिन मुसाफिर को आज छोड़े उसकी बात कर लो, मैंने इतनी लंबी मैंने गुफ्तगू की नहीं, ये सारा मजमा ही मुसाफिर बन जाएगा मेरी तकलीफ की। खुलासा ये है कि बीमार आदमी रोजा माफ है या हराम, दोनों कैटेगरी में वो रोजा नहीं रख रहा तो उसको हर रोजे के बदले एक फिदिया देना पड़ता है। अब क्यों दुनिया में हर जगह वेट के अलग अलग इस वक्त यूनिट चल रहे हैं, पाकिस्तान के एतबार से हम कहते थे 14 छिटा, या जो आजकल नई चीज है तो 3/4 किलो। बहरहाल वो हिसाब तो आप बाद में कर लीजिएगा, वो इतनी अहम चीज नहीं बता रहा, लेकिन बीमार आदमी को हर रोजे के बदले में तकरीबन 1 किलो, तकरीबन 2 पाउंड, अब जो भी आपके यहां चले, ये खाने पीने की चीज देना। इसमें दो बड़ी गलत फहमियां लोग, दो गलत एक्शन होते। नंबर एक, लोग पैसे देते, पैसे नहीं चले, बीमार आदमी को खाना ही देना, फूड स्टॉपर, वही मीट है या वही राइस है या वही रोटी, अगर उसी के इक्विवेलेंट कैश दे दे तो कैश नहीं चले, पहली बात। तो ये तो मैं पिछले साल और उससे पिछले साल 2 साल पहले में भी बता चुका हूं। इसके बाद का मतलब हमारे यहां तरीका ये कॉमन प्रैक्टिस इंडिया में और पाकिस्तान वो ये है कि एक आदमी बीमार और उसे बताया कि इसमें रोजे की ताकत नहीं, तो उसने पूरे महीने का कैलकुलेशन किया कि कितना मेरे ऊपर मसलन 30 दिन के 60 पाउंड खाने की चीज बनती है, वो उसने पहले रमजान को जाते थे। अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी ऑफ पराजय अदालत, यानी जो आपने दे दिया वो चैरिटी बने, रोजे के बदले वाला जो आपको देना था वो नहीं बने, क्योंकि रोजे के बदले जो दिया जाता है 2 पाउंड पर रोजा, वो इस साल आप बीमार है वाजिब होगा अगले साल जब रमजान का चांद नजर आएगा, अभी ये वाजिब ही नहीं, अगले साल जाके वाजिब होगा। यानी इस साल के रमजान खाने पीने की चीज वो लोग देंगे जो पिछले रमजान में बीमार थे, अब जाके वाजिब होगा। और इसमें अक्सर मेजोरिटी ऑफ पराजय कहती है कि एडवांस की देने की इजाजत ही नहीं। आपने कहा कि मौलाना इस साल में बीमार और मुझे पता है कि मेरी बीमारी अगले साल तक कंटिन्यू रहे, तो डिले करने से क्या फायदा, मैं टाइम से पहले ही उसको दे रहा हूं। ये तो मैं कह रहा हूं, लोग तो उसको टाइम से पहले नहीं समझते, लोग समझते हैं अभी हम बीमार है तो अभी हमको फिदिया देना, नहीं, फिदिया वाजिब होगा नेक्स्ट ईयर। क्योंकि इसके अंदर एक मसला तो ये कि बीमार आदमी के लिए ये भी वाजिब कि अगर वो इस वक्त बीमार है तो पूरा साल वो ट्राई करे, हो सकता है साल में फसल विंटर वेदर भी अच्छा होता है, टाइम भी बहुत छोटा होता है रोजे, हो सकता है आज 14 घंटे का रोजा न रख सके, विंटर में 8 घंटे का रोजा हो जाए तो रख ले, मुझे नहीं पता एडेन 8 घंटे का कभी होता है कि नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड में हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, स्वीडन में हो जाता है। तो पहले तो बीमार आदमी पे ये वाजिब कि अभी अगर रमजान में बीमार है तो आगे के पूरे 11 महीने उसको ट्राई करना है, और आगे के 11 महीनों में उसको 2 एडवांटेज हो, एक तो ये कि विंटर में रोजा आसान हो जाए, दूसरा ये कि साथ नहीं रखना, अगर हर वीकेंड में रखी, अगर हर शबे जुमा यानी जुमेरात और इतवार को रख ले तो 2-2 रोजे करके साल के अंदर जो 45 उसको दिन में जाएंगे तो उसमें पूरे रोजे हो सकते हैं। रमजान का तो प्रॉब्लम क्या है कि आजकल समर का रमजान, ड्यूरेशन भी ज्यादा और एक 7-30 रोजे रखना, तो बीमार आदमी की ये पहली जिम्मेदारी है कि पहले ये देखे कि आने वाले 11 महीनों में अगर पॉसिबल है तो वो रोजा ही रखेगा, ना पैसे देने से काम चलेगा ना रोजे से इज्जत मारे जाए। लेकिन अगर ऐसा बीमार आदमी है कि 100% कन्फर्म श्योर कि ना किस रमजान में रख सकता है ना 11 महीने रख सकता है, तब भी फिदिया उसके ऊपर वाजिब होगा अगले रमजान की पहली तारीख को इस साल। और मेजोरिटी ऑफ पराजय कहते हैं अगर आपने अभी से दे दिया एडवांस फिदिया नहीं चलेगा, जस्ट लाइक नमाज। अगर किसी आदमी से नमाज कदा हो गई उसे खुद पढ़ना है जब तक कि वो जिंदा है, कोई और नहीं पढ़ सकता। अब मसलन हमारे वालिद कुछ नमाजें फर्ज की जब कदा होगी कोमे में चले, और मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि अभी को होश नहीं आएगा, इसी हालत में हमारे ऐसा कोमा, फिर भी हम नमाज उनकी नहीं पढ़ सकते जबकि कंफर्म है کہ بعد میں کسی حالت میں انتقال ہوگا، یہ خود نماز پڑھنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں آئی، مگر جب تک کہ زندہ ہیں ایڈوانس میں ان کی قضا نماز نہیں ہو سکتی. یا مثلا ایک عام آدمی، اسے پتا کہ آج رات کے 3 بجے اس کا ایک ایسا آپریشن یا سرجری شروع ہو جو 3 بجے سے لے کے 8 بجے تک مسلسل رہے، فجر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوگا، وہ آپریشن ٹیبل پہ بے ہوش. وہ کہ میں ایڈوانس میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں 2 بجے رات کو. نہیں، 100% کنفرم ہے کہ نماز کے ٹائم پر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، پھر بھی قضا کر کے پڑھنا لیکن ایڈوانس نہیں پڑھنا. یہ فدیے کا ایک مسئلہ، بہت تیزی سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے فدیہ دے بھی رہے اور پتا چلے کہ قیامت کے دن ان کے ایریئر میں یا واجبات میں یہ لکھا ہوا گیا کہ اس نے رمضان کے روزے بیماری میں چھوڑے، اور ہم نے کہا کہ فدیہ دو اور اس نے فدیہ بھی نہیں دیا. اس لیے کہ بہت سارے گناہ ہمارے یہاں انٹینشنلی اور پرپزلی نہیں ہوتے، لیک آف نالج اور اگنورینس کی وجہ سے ہوتے. اسی لیے بیسٹ مومن اس کو کہا گیا جو عبادت کم کرے لیکن معلومات کے ساتھ کرے، علم کے ساتھ کرے. مولا کی مشہور حدیث کہ ان کا سرا زخری رجلان، دو آدمی ہیں جنہوں نے میری کمر کو توڑ دیا. مشکل کشائے کائنات، حلال مشکلات، ہر پریشان ہاتھ کی کمر کا سہارا. وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا، ایک وہ عالم جو فاسق دنیا پہ بچ چکا، اور ایک وہ عبادت گزار جو جاہل ہے. عبادت حد سے زیادہ کر رہا ہے لیکن شریعت کو یا دین کو سمجھ کے عبادت نہیں کر رہا. امام نے اس کی جو مثال دی اسے آپ یہاں پہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ سنیں گے. کہا کہ ایسا عبادت کرنے والا روزہ رکھ رہا ہے اس کو پتہ ہی روزے کے مسئلے کیا، جو میں نے کل زیارت وارثہ کے لیے کہا کہ زیارت وارثہ ہر شب جمعہ ہمارے یہاں پڑی جاتی. کیوں؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی دیکھا. کیا اس کا بہتر ہو زیارت وارثہ امام نے کس مومن کو دی؟ زیارت وارثہ امام نے کس وجہ سے دی؟ مومن نے اپنا کیا پرابلم بتایا جب چھٹے امام نے کہا زیارت وارثہ پڑھو؟ کتنے لوگوں کو ساری چیزیں معلوم؟ وہ کل کی بات. اسی انداز جب سے وہ سنبھالا، جیسے روزے چل رہے ہیں ویسے رکھو، جیسی نماز ہے ویسی نماز پڑھو. مولا نے کہا وہ عبادت کرنے والا جو لیک آف نالج کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اس مسافر کی طرح، جو صحیح سڑک پر آ گیا ڈائریکشن اس کی الٹی، وہی روڈ جس پر اس کو جانا، وہی ہائی وے ہے، وہی فری وے ہے جس پر اس کو جانا، وہی نمبر لکھا ہوا ہے جو نمبر بتایا گیا، مگر نارتھ کی جانے جانا ہے وہ صحیح روڈ پر ہے، ساؤتھ کا روڈ کیے ہوئے. جتنا زیادہ تیز دوڑے گا اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. ماہ مبارک رمضان، ایک حدیث، ایک علماء کا ایک جملہ. میں 19th آف رمضان کو یا 23rd کو پڑھتا ہوں، آج آپ 3rd آف رمضان کو سنیے، یعنی شب تین. شب فرض ایک ایسی رات ہے کہ سارا سال عبادت کے قریب نہ آنے والا بھی شب فجر عبادت کر لیتا. اور لکھا ہوا ہے کہ اس رات کا سب سے افضل عمل قرآن کے عمل سے زیادہ، 2 رکعت نماز پاک پلو اللہ والی اس سے زیادہ، 2 آئے مکارم الاخلاق سے زیادہ، 2 آئے جوشن کبیر و صغیر سے زیادہ، جتنے بھی ہمارے سب کی اہمیت ہے، ان سب سے زیادہ افضل عمل ہے مذاکرہ علم. 2 مسئلے شریعت کے آپ اس رات کو سیکھیں، اس کا ثواب ان سب سے زیادہ. 102 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اور ایسے کپڑوں میں پڑھی جس کے اندر نماز ہی باطل تھی کیونکہ خمس نہیں نکلا ہوا. تو پتا چلا کہ 102 رکعت نماز پڑھ کے بھی آخر میں 0 پہ آپ کھڑے ہوئے. میں مثالیں نہیں دے رہا اس لیے کہ آدھا گھنٹہ پتا نہیں کہاں چلا گیا، جبکہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسائل کے بیچ میں، اب میں تقریر پہ آ چکا ہوں. خلاصہ یہ کہ رمضان کی افضل ترین عبادتوں میں اس کو قرار دیا گیا کہ آدمی اپنے علم کو بڑھا، ایٹ لیسٹ اپنا روزہ صحیح کر لے، اپنی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اس رمضان میں درست کر لے، وہ اپنی جگہ ہوگی بات. لیکن پھر آئیے اس جملے کو جس سے میں کنیکٹ ہو رہا ہوں رمضان کے ٹاپک سے، دوبارہ دوہرا کہ بہت سے گناہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں، گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ لیک آف نالج، گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی عمل حرام کا عمل. گناہ سن، کل میں نے شب جمعہ کے 3 میسج دیے، امام زمانہ، عذاب قبر، دعا. اور एक बात याद रखिए कि दो चीजें इस्लाम ने ऐसी बताई जो इन तीनों को आपस में मिलाती, दो चीजें तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती। जैसे हदीसे किसान के हवाले से जुमला उलमाए कराम और खुतबाए आजाम से सुनती, हदीसे किसान में शहजादी फातिमा को मरकज बनाया गया, उन फातिमा को वह अबू वह बाल वह बनू, यही जुमला पे एक सवाल हुआ और आपने बार बार सुना, मैं तो आपको वहां से ले जा रहा हूं, तवल्ला से मैं ले जा रहा हूं तबर्रा के उस मंदिर के ऊपर जिसकी तफसील बाद में आएगी, लेकिन जुमला आज मुकम्मल हो। कहा इसलिए कि फातिमा की जात को साथ जो इन तीनों को मिलाने वाली, सब बेशक एक नूर के टुकड़े मगर इस दुनिया में मुख्तलिफ रिश्तों के साथ आए। फातिमा वो है कि जो तीनों को मिलाती, रिसालत को, इमामत को, हसनैन को। और वो किस तरह कि जितने भी चादर तफी तरीके जमा दुनियावी एतबार से उनके एक दूसरे से रिश्ते डायरेक्ट नहीं, रिश्ते तो होते डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाप और बेटे का रिश्ता डायरेक्ट, शोहर और बीवी का रिश्ता डायरेक्ट, नाना और नवासे का रिश्ता डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट। बीच में एक औरत है जो बच्चों की मां बनी है, उसकी बेटी बनी है, तो उसने नाना को नवासे से भेजा, तो ये रिश्तेदारियां जो वो कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट। चादर तफीर में जिसको भी मरकज बनाता अल्लाह, उसका रिश्ता सबसे डायरेक्ट ना हो। अगर खुदा कहता ये रसूल है, ये रसूल या अली, अली और रसूल एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, लेकिन दुनिया में जो रिश्ते में आए चचादार भाई का रिश्ता है वो भी डायरेक्ट नहीं, खुसर और दामाद का रिश्ता है वो भी डायरेक्ट नहीं, बेटी के जरिए से दामाद का रिश्ता बनता। अगर अली को मरकज कारो बनाया जाता, अली का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट है, हसनैन से डायरेक्ट है, लेकिन रसूल से इनडायरेक्ट। हसनैन को अगर मरकज कारो बनाया जाता, रिश्ता अली से डायरेक्ट है बाप, फातिमा से डायरेक्ट है मां, रसूल खुदा से इनडायरेक्ट है नाना। वाहिद जात चादर तफी के नीचे फातिमा की, जिसका सबसे रिश्ता बराह रास्त है, पैगंबर की बेटी है, बाप और बेटी का रिश्ता बराह रास्त है, हसनैन की मां है, मां और बेटे का रिश्ता बड़ा एहरास है, अली की बीवी है, शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा एहरास है, तो एक ऐसी सास है फातिमा की जो पूरे चारों पंचतन में से चार को जोड़ने और मिलाने वाली, ये तवल्लाई जोड़ा। और अब आइए तवल्ला के हवाले से एक बात कही जाती है, गुना, गुना ये एक ऐसी चीज है जो उन तीनों टॉपिक को मिलाने वाली है, जो रमजान के भी है और शब जुमा के भी। गुना इमाम जमाना के हवाले से भी समझना जरूरी, गुना दुआ के हवाले से भी समझना जरूरी, गुना कब्र के अजाब के हवाले से भी समझना जरूरी। मौला आप हमारी जियारत, आप हमें जियारत का शरफ क्यों नहीं देते? एक नहीं कितने ऐसे वाकयात हैं जिसमें इमाम जमाना से यह सवाल हुआ, और खाली खैबत कुबरा नहीं, जिन वाकयात से हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ईवन खैबत सुबरा में जो बिल्कुल ट्रस्टवर्थी वाकया है। मौला हमने माना आप बनू अब्बास के खुलफा से गायब, समझ में आ गए। मौला हमने माना कि आप सद्दाम और उस जैसों से गायब है, समझ में आ गए, लेकिन हमसे क्यों गायब? अपने मानने वालों से, अपने चाहने वालों से जो दिन रात आपके लिए तड़प रहे। तो इमाम के जवाब में दो जुमले, पहला जुमला यह कि तुम क्या मेरे लिए तड़पोगे, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। अब मैं मुजीब उल मुख्तर राइदा दहा, हदीसों में है कि ये लफ्ज मुस्तर इमाम जमाना का कहते हैं, मुस्तर जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता। मुस्तर कौन है? इमाम जमाना। क्यों मुस्तर है भाई? इसलिए हमें और आपको वो अपनी जियारत कराना चाहते हैं, वो हमसे ज्यादा वो बेचैन और परेशान है कि जाहिर हो जाए। लेकिन पहला जुमला ये कहा कि तुम क्या मुस्तर हो गया, मैं तुम्हारे लिए मुस्तर, मगर फिर मौला क्यों नहीं आते? कहा तुम्हारे गुना, जो जुमला है रिवायत का, अली ने महजयाल कूफी का वाकया इस साल बाद हालात की वजह से माह रमजान की हमारी ज्यादा तकारीर का टॉपिक के मामले जमाना हो, सब तो नहीं मैं वादा कर सकता, लेकिन ज्यादा कर तकारीर जो दुआएं पिता का मकसद, लेकिन वो अभी एक आध दिन लगेगा उस पर डायरेक्ट आने में। अभी तो ये बात कि ये जुमला है अली ने महजयाल कूफी का इमाम ने फरमाया तुम्हारे गुना सबब है जो हम तुम्हें अपनी जियारत नहीं कराते। गुना इमाम जमाना के जहूर में रुकावट बन रहे, और दुआ, ये तो कभी आप पढ़ भी रहे थे और स्क्रीन पे देख भी रहे थे। अल्लाहुम्मा फिर यह गुनोबल लतीफा पे तो दुआ, खुदा बंदा मेरे गुनाह माफ कर दे, जो दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाते। दुआ की कबूलियत अपनी जगह पर है, लेकिन गुनाह वो चीज है जो इमाम जमाना को जाहिर होने से रोक रही। दुआ वो चीज है जो हमारी दुआ कबूल, गुनाह वो चीज है जो इमाम जमाना को जाहिर होने से रोक रही। गुनाह वो चीज है जो इमाम जमाना के हक में जो हम दुआ करते हैं उस दुआ से हमको रोक रही। यही अल्लाहुम्मा कुल्ल वली अकल हुज्जत इब्न हसन सलावातों का अलैहि वाला आलाई, उस दुआ का मकसद। हमारा गुना सबब बनता है इमाम परेशानियों में मुबतला होते, हमारे गुना सबब बनते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। खाना काबा का पर्दा पकड़ के दुआ मांगते कबूल नहीं, जियारत वारिसा के बाद दुआ करते दुआ कबूल नहीं, हालत नमाज के खुनूज में दुआ करते, सब दुआ की अहम जगह, करबला गवल्ला पहुंच के दुआ करते और दुआ कबूल नहीं। इसलिए नहीं कि आका हुसैन के पास ताकत नहीं है हमारी दुआ कबूल करवाए, इसलिए कि हमारे गुना दुआ के रास्ते में रुकावट बनते। रमजान तो हरी दुआ का महीना, और याद रखिए कोई मोमिन ये जुमला नहीं कह सकता कि मौलाना सारा साल गुजर गया हमें जरूरत ही ना पड़ी दुआ करने। खबरदार के जुमला आपकी जबान में ना आए जब ये जुमला झूठ है, और यह जुमला इस बात की निशानी है कि अल्लाह से नाराज। रसूल खुदा मोमिन की दावत पर उसके घर जाए, मदीना मुनव्वरा में एक मोमिन, उसे बड़ा शौक कि पैगंबर उसके घर कभी दावत पे आए। डरते डरते हिम्मत करके पैगंबर को दावत दी। वो जिस चीज से डर रहा था वो तो अगेंस्ट इस्लाम। मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि जब मोमिन दावत दे तो उसकी दावत को फौरन कबूल कर। हत्ता दावत मोमिन की खातिर नमाज भी कुछ ताखीर से पढ़ी जा सकती, किसी मसला है कि नहीं। तो मुस्तहब यह है कि मगरिब की नमाज पढ़ के रोजा इफ्तार किया जाए, लेकिन अगर तुम्हारा मेहमान दस्तरखान पे तुम्हारा मुंतजर, तो जाओ पहले उसके साथ खा के आओ, उसके बाद नमाज पढ़ लेगा। अब मैं डिटेल में मसाइल भी नहीं जा रहा हूं, वरना वक्त बहुत ज्यादा लग जाए। क्या रोजे के लिए यह मसला नहीं है कि अगर सुन्नत रोजा रखा कोई दावत दे दे तो अपना रोजा तोड़। कराची के कितने महलों लोग रोजे रखते ही इसलिए है कि एक घंटे के बाद रोजा तोड़ नहीं छोड़ना। कोई ना कोई मोमिन पान लेकर चोरी की गलियों या रजिया के महिला में घूम रहा हो, लगा नहीं रही होता। जेबे भर के आते हैं शादी से पान बनवाते हैं जो रजिया की बहुत ही मशहूर, और वह इसीलिए कि पान की दावत जिसमें जाता है। मसला बहरहाल लोगों के जहन में है, चाहे तरीका इस्तेमाल इतना अच्छा न हो तो अब जब कोई मजा नहीं तो पैगंबर क्यों मना कर। हाँ हराम माल से वो दावत कर रहा है तो यकीनन मना कर। और ये बहुत अहम जुमले पर मैं आपको लेके आया हूं, लेकिन शायद अब इसका मौका आज नहीं कर आए। खुलासा ही बहुत अहम जुमला है, लेकिन बात पैगंबर की दावत की रस्ते रखते पैगंबर ने कहा बिल्कुल मैं आ रहा हूं। कहा कि यार रसूल अल्लाह फिर अकेले ना आइए ना, कुछ और लोगों को लेके आइए, क्योंकि उसने पैगंबर की वो हदीस सुनी थी जो पैगंबर ने बार बार इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत होती है तीन आदमियों पर। लानत तो बहुतों पर होती, लेकिन इस वक्त खास कॉन्टेक्ट में कहा तीन आदमी, अकेले खाने वाला, अकेला सफर करने वाला, अकेला रात को घर में सोने वाला। अब ये जो तीसरा जुमला है ये वाली हदीस तो आज शादियों के लेक्चर में अक्सर सुनते हूं कि इस्लाम में शादी की कितनी अहमियत है, अकेले जिंदगी ना गुजारो। ये लेकिन सही दो बात, एक अकेला खाने वाला और एक अकेला सफर करने वाला। चना देखा यार रसूल अल्लाह अकेले नहीं आई जब कुछ को लेके आइए इजाजत दे। पर हम मैंने कहा अच्छा ठीक मैं लेकर आऊं, सुबह का वक्त है, ठंडा ठंडा वक्त है, मदीने के अंदर गर्मी कितनी शदीद क्यों ना हो लेकिन नमाज फजर के बाद का वक्त बड़ा प्लेजेंट होता। आप इसे जो उम्रे या हज पर गए हमको मदीने की गलियां और मदीने की सुबह याद आ रही होगी। तो खैर पैगंबर जाके उसके घर में बैठे, सहन है एक दो कमरे का मकान है, क्या बहुत बड़ा खुला सहन है, वहां ये लोग बैठे हुए। साहिब खाना दावत के इंतजार में लगा हुआ, मेरी मजालिम बहुत ज्यादा सुनने वालों को एक बात कहें कि बाद कोई वाकया मुझे इसमें भी पढ़ना पड़ता कि खास उसकी ख्वाहिश की गई होती। मैं लाता अपने ही टॉपिक के अंदर हूं, उसके लिए मैं इधर उधर नहीं जाता, बात वही चल रही। अब पैगंबर बैठे असाबे रसूल बैठे उसके घर में, जानवर भी पले हुए तो इस्लाम में रेकमेंडेड है। सुबह गलत पे मुर्गी उछल के दीवार पे गई, पुराना जमाना है तो स्काई स्क्रैपर तो है नहीं, छोटे छोटे मकान, दीवार पे गई और वहां पे उसने अंडा दिया। अब वो दीवार पे अंडा दिया तो अंडा जो था तेजी के साथ स्लिप होकर जमीन की जानिब गिरा। कोई ऐसी नई अजीब बात नहीं, इस किस्म के वाकयात तो होते रहते। अजीब बात यह कि दीवार पे दो कीड़े इस तरह लगी कि यह अंडा गिर रहा था उन्हीं के दरमियान पहुंचा और फंस गया, फंस गया यानी टूटने से बच गया। अब ये जरा सी एक अजीब बात थी, तो आमतौर पर अनयूजुअल सी बात, सर में बहुत अहम बात भी नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैरत से कह रहे देखो देखो कि किस तरह से एक इत्तेफाक के जरिए से मौजूदा हो गया ये अंडा टूटने से बच गया। इससे में करवाला भारत दीर्घा के लोग बड़ी हैरत के साथ उस अंडे को देख रहे हैं। क्या भाई हैरत क्यों, कहा कि यह अंडा टूटना यकीनी था, बच गए। उसने मुस्कुरा के कहा तुम खाली इसको देख के हैरान हो, अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाऊं तो तुम शायद बेहोश हो जाओगे। पढ़ो, जब से मैंने होश संभाला है और कल मैं इस्लाम पढ़ा आज तक अल्लाह ने मुझे कोई नुकसान होने ही नहीं दिया। हफ्ता यह कि जहां 100% कंफर्म नुकसान नजर आ रहा, लास्ट मोमेंट में कोई ना कोई अल्लाह की मदद आ जाती। इतना छोटा सा नुकसान भी नहीं हुआ कि ये 15 या 20 सेंट का, ये मैं अंदाजन कह रहा हूं, बाद में आके ना कहिएगा मौलाना इससे सस्ते अंडे कहां मिलते हैं, हमें भी दिलवा दीजिए। तो खैर 10 सेंट का या 15 सेंट का ये अंडा, इतना नुकसान भी अल्लाह ने नहीं होने दिया। लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं से अल्लाह की मदद आ जाती। वो तो बढ़ चढ़ के अपनी जिंदगी सुना रहा, और देखा तो अल्लाह के रसूल खड़े होकर उसके घर से बाहर जा, या रसूल अल्लाह कहां जा रहे, कहा कि नबी की शान के खिलाफ। ये लफ्ज भी बहुत अहम है, फिक्री एतबार से इसमें कई मसले बनते हैं, लेकिन आज के लिए नहीं, ये सब आइंदा के लिए। पैगंबर ने कहा नबी की शान के खिलाफ, नबी के लिए मुनासिब नहीं ऐसी जगह पे ठहरना जिसके बारे में उसे पता चल जाए कि अल्लाह इससे नाराज है, इस जमीन वाले से, इस घर वाले से, या रहमत खुदा कभी नहीं आती। नबी के लिए मुनासिब नहीं, आम आदमी के लिए हराम नहीं था, नबी की शान के खिलाफ। घबरा के कहा या रसूल अल्लाह क्या अभी अभी जिब्राइल ने आके वही दी, क्योंकि जब पैगंबर ने कल ये दावत कबूल कर ली दैट मीन्स कल तक पैगंबर के इल्म में ये नहीं था। इल्म में तो होगा लेकिन पैगंबर ने इसको जाहिर नहीं किया, तो आज एकदम बैठे बैठे क्या अभी जिब्राइल आए, कहा नहीं तू जो अपनी तफसील बता रहा। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो तफसील बता रहा हूं, अल्लाह मुझसे कितना खुश है, कितना मेहरबान है। कहा नहीं, जिस बंदा मोमिन को 40 दिन में प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह उससे नाराज है, अल्लाह ने अपनी तवज्जो उसे हटाई, उसको उसकी हाल में छोड़ दिया जैसा ये जिंदगी गुजारे, जिससे अल्लाह खुश होता, जिससे अल्लाह राजी होता, जिससे अल्लाह की नजर रहमत होती है, उसका अल्लाह इम्तिहान भी लेता है, उसे ट्रायल में भी डालता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ मुसीबतें भी आती हैं। आले मोहम्मद से ज्यादा अल्लाह किससे राजी होगा। शब हिजरत अली ने बिस्तर रसूल पे सोकर एक बार अल्लाह की रिजा खरीद ली, और आले रसूल से ज्यादा बड़ा इम्तिहान भी अल्लाह ने किससे लिया। तो अगर कोई मोमिन ये कहे कि मौलाना ये दुआ हुआ हमारा मसला नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती दुआ, मेरे घर में कोई ऐसी परेशानी आती ही नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा, और यह अगर सच बोल रहा है तो दलील इस बात की है कि अल्लाह उससे राजी ही नहीं है। कोई ताल्लुक भी मेरा नहीं है कि मैं उसको सुनाऊं, वरना बंदा है मोमिन को इम्तिहान और मुसीबतें आई, मगर ये दुआओं के जरिए जो अल्लाह ने हमें बचने का एक तरीका बताया वो नाकाम हो जाता है। गुनाह गुनाह वो चीज है, मैं आज बताई जुमला ये कह रहा कि ये तीनों चीजें जो शब जुमा की भी है और पूरे रमजान महीने की भी है। कल का जुमला इंग्लिश लेक्चर में जरा इनकम्प्लीट था। ये तीनों चीजें अजाब कब्र, इमाम जमाना, दुआ पूरे रमजान की 30 रातों की है, साल की पूरी 52 शब्द जुमा की, और तीनों को मिलाने वाली चीज गुना। गुना इमाम जमाना के जहूर में रुकावट, गुना दुआ की कबूलियत में रुकावट, गुना सबब बनती है अजाब कब्र। अल्लाह उस तरह से अपने अजाब नहीं भेजा जिस तरह आदमी कभी अपने छोटे बच्चे से खेलता है ना, एक भी मंदिर आके खेल रहा तो मजा आता है उसके रोने में, उसके तड़पने में, उसकी चीज छुपा ली। अब वो बच्चा रो रहा है, तड़प रहा, कम अज कम पाकिस्तानी बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ अमेरिका में तो हर चीज पूछना पड़ती है क्या होता, तो खाली आज्ञा बदल ही उल्टे नहीं, हर चीज उल्टी है। तो खैर अब यह है कि हो सकता है यहाँ के बच्चे ये ना करते हो, मगर आमतौर पर हमने यही देखा है कि बच्चे यही करते, तब हम दिल जाता बच्चा रोज बच्चा कहा कि हमारे पास है बच्चे, हमने कोई चीज छीनने की कोशिश कर, हम तो जाए उसके लिए, लेकिन थोड़ा कड़पा कर, थोड़ा तरसा के, थोड़ा परेशान करके चीज उसको देते। तो अब अल्लाह इसलिए हमारे घर पे मुसीबतें नहीं डालता, हमको इसलिए अजाब में नहीं डालता, अल्लाह अजाब में डालना भी नहीं चाहता, हमने अपने गुनाहों की वजह से मामला इतना बिगाड़ दिया। तो गुनाह वो चीज जो इमाम जमाना से लेकर दुआ से लेकर अजाब है कब तक सारी चीजों को मिलाने वाले, और गुनाह में एक बात बहुत अहम आज याद रखी, ये सब इमाम जमाना के सब्जेक्ट की तैयारी हो रही, और वो ये कि जिस दिन अल्लाह ने हमको बढ़ाया तो हमारे इंग्रीडियंट में गुनाह करने की खासियत रखी, पर इसे तो देख रहे थे ना कि इंग्रीडियंट में क्या मिलाया जा रहा, ये जैसे आप सुपर मार्केट के शेल्फ पे चिंगम उठा के पढ़ते इसके इंग्रीडियंट क्या, तो फरिश्तों ने भी पढ़ा कि क्या इंग्रीडियंट है, घबरा के कहा भी खुदावंद किसको बना रहा, तो सारी चीजें सुनी तो अल्लाह को पता, अल्लाह ही हमारे इंग्रीडियंट में डाली है ये चीज, तो हमसे गुनाह हो जाए ये कोई अजीब बात नहीं, गुनाह ना हो ये अजीब बात, गुनाह हो जाए की बात नहीं, पर एक चीज की अल्लाह डिमांड करता है, गुनाह हो जाए आपकी गुनाह गलती को मान लो, इधर उधर के एक्सक्यूज लेके ना हो, कोई साहब कहते दाढ़ी, अरे दाढ़ी पुराने वाली थी, बाकी सारा पुराना कमल करे थे मैं दाढ़ी वाली आए तो आपकी समझ नहीं आती, एक औरत किसी वजह से पूरा हिजाब नहीं करती, मान ले कि मैं गलती कर रही हूं, हिजाब तो आंखों का होता है, हिजाब तो दिल का होता है, और इनसे क्या हिजाब, ये तो भाई है, और हिजाब तो भजनों का बनाया हुआ मसला है, और हमको एक्सपीरियंस को थोड़ी है कि ये हिजाब करे, इस्लाम बहुत लिबरल हो, मान ले अपनी गलती, कब तक तुम अपनी जबान पर काला काले कुछ ना बोले, दुआए कुनैल के शुरू में ये हमको सलीका सिखाया गया, दुआए कुनैल खुद बहुत अहम दुआ, खाली दुआ के अलावा उसके पैगाम यार, खुदा मैंने गुनाह किया और मेरे पास कोई हुज्जत और एक्सक्यूज नहीं अपने गुनाहों, ये होना चाहिए बंदे मोमिन की शान कि अगर किसी वजह से गलती हो, और खुद हम गुनाहगार हैं, हमको अल्लाह ने मासूम बनाया ही नहीं, हमारी गलतियां अल्लाह को भी मालूम है, कभी तौबा का रास्ता भी रखा है, इस्तिग़फ़ार का दरवाजा भी खोला, अगर गलती मानो तो तौबा करोगे, गलती मानो तो इस्तिग़फ़ार करोगे ना, अल्लाह जिस वक्त हम अल्लाह से बहस शुरू कर देते हैं उस वक्त वहीं से मामला निकलता, और याद रखिए कि ये जो हम एक्सक्यूज लेकर आते हैं, तो लोग कहते महाराज इस्लाम इतना अच्छा और इतना बड़ा मजहब, आपकी वजह से सुने तो लगता है सारा इस्लाम दाढ़ी और सारा इस्लाम पर्दा है, कुछ सही नहीं उसके अंदर, नहीं मसला ये नहीं है, मसला शैतान का तरीका आपको बता रहा, शैतान का मोमिन से एकदम से शराब का गुनाह करवाया गया, क्या मोमिन को एकदम पत्थरों खराबगरी के रास्ते में लगाया गया, नहीं, क्या मोमिन को जिना के रास्ते में लगाया गया, नहीं, शैतान को पता है कि मोमिन बिगड़ता कहां पे क्या गुनाह करके एक्सक्यूज लेकर आता, ये शैतान का, और इसके लिए शैतान स्टार्ट करता है पहले छोटे गुनाह, बहुत ही मशहूर बस्तीसा की रिवायत सुन लीजिए, आज की रात के लिए यही काफी, देखिए कितना नेक आदमी हमारे पास हिस्ट्री में उलमा और इबादत करने वालों की कुछ मुख्तलिफ टाइप की लिस्टें हैं, मतलब एक लिस्ट है हमारे वो उलमा, इमामों की बात नहीं हो रही, इमाम का रुतबा तो इतना बड़ा सोच भी नहीं सकते, हमारे वो उलमा जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कोई हराम काम किया ना कोई मकरूह काम किया, लिस्ट है पूरी, एक आदमी नहीं पूरी लिस्ट, एक लिस्ट है वो लोग जिनको अल्लाह ने मुस्तजाब दावत का रुतबा दिया, उसमें बस्ती साधा नाम मुस्तजाब दावत उस आदमी को कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने उसकी इबादत की वजह से ये गिफ्ट दिया है कि जो दुआ वो करता है फौरन उसकी दुआ कबूल हो जाती है, फौरन अपने लिए करे कि किसी और के, ये बात है फेरिस्त हमारे पास, लेकिन इनमें दो ऐसे मुस्तजाब दावत गुजरे जो शुरू में इतने नेक थे फिर एंड उनका वो हुआ, एक ही और ही सुन रहे हैं आप बरसीसा, और एक वो बयामे बाबू जिसको कुरान ने सातवें पारे सातवें सूरे में कुत्ता कहा, कुरान मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ज्यादा से ज्यादा जो एक बंदा है मोमिन को कह सकता हूं गधा अपने आप, लेकिन वो गधे वाली रिवायत अगले में बताएगी ईमान जमाना के, क्योंकि हमारे यहां हमारे फसल ईमान की एक रिवायत बहुत मशहूर हो गई, मन माता वलम यारिक इमाम जमाने ही माता नहीं फसल जारी, एक और रिवायत दी है मन माता वलम यारिक इमाम जमाने ही मात नहीं फसल हिमा, वो मरेगा तो गधे की मौत, मरेगा तो गधे इंशाल्लाह अगले वीक में डिस्कस किए जाएंगे। अभी फिलहाल बस तीसरा और बलमे बाबू जिसको कुरान ने कुत्ता था, वो भी बहुत अहम बात है, लेकिन वो इमाम जमानत से रिलेटेड है तो उसको अगले हफ्ते ही बताऊंगा। अभी बस तीसरा आज के टॉपिक से रिलेटेड है गुना, ईमान के लिए रुकावट बन रहा है गुना, जुआ के लिए रुकावट बन रहा है गुना, अदालत खबर को लेकर तीन चीजें, दो चीजें ऐसी हैं जो इन तीनों टॉपिक को मिलाती है, एक निगेटिव जो आज आप सुन रहे हैं और एक पॉजिटिव जो आप कल सुने। बस ठीक है मुस्ता जाब उतारो जिसकी आप में जवाब है और हम दुआ करो। अब सूरह हशर के आखिर में पूरा वाकया भी मौजूद, यानी जो कुरान का हिस्सा ही होता, कुरान पूरा वाकया तो इस तरह नहीं बताता जैसे हिस्ट्री की बुक में लिखा, लेकिन यह कुरानी वाकया है सूरह हशर के आखिर। याद करो उस इंसान का वाकया जिससे शैतान ने कहा था उपुर कुफ्र इख्तियार कर, फलम मसफरा जैसे वो काफे बना काला इनने बड़ी मिलकर शैतान को चक्कर में डाल के ये कह के भागा कि अब मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो खुद अल्लाह से डरता हूं, मैं तुझे क्या बचाऊंगा अल्लाह। वो ये वाकया, जरा मेरी स्पीड भी फास्ट है, जरा मेरी उर्दू भी स्ट्रांग है, इंग्लिश का एकदम भी नहीं आ रहा, जो कि इंग्लिश के लिए तो हमारे ये तीन साथी मौजूद है जो कल इसको ट्रांसलेट कर देंगे। बस ठीक है, उसी जमाने में शहर के एक बहुत ही मशहूर इज्जत वाले काबिले सलाम घराने एक लड़की बीमार पर, और ऐसी बीमार कि जैसे जैसे इलाज किए, वो जो है ना उर्दू का मित्रा मरद बढ़ता गया झूठू दवा की, अगले बड़ा काबिले सलाम घराना बड़ा पैसे वाला घराना, बड़ा सोर्स वाला घराना है, डायरेक्ट इनकी बादशाह के महल में आमद हो रहा, तीन जवान भाई है उनकी एक ही बहन, और ऐसी बीमारी घबरा गए परेशान हो गए, जब सारे तरीके इख्तियार करते तो वही जो दुआ का असल जुमला, जहां दवा नाकाम होती है बस फिर वो दुआ की मंजिल होती है, सारी दवाएं नाकाम तबीबों ने इलाज बंद कर दिए, हेपेटाइटिस के कैंसर के एड्स के कुछ मरीज हैं के इलाज बंद कर दिए, तो आप सीधा बरसीदा के पास गए, बरसीदा राहिब उस इबादत करने वाले को कहते हैं जो इबादत के शौक में शहर छोड़ के जंगल में जाके बैठता, शहर में रहोगे इबादत कर नहीं पाओगे, इबादत करना चाह रहे हो कहीं से बीवी आ गई, कहीं से बच्चे आ गए, कहीं से भाई आ गए, कहीं से बहनें आ गई, कितनी रुकावटें बन जाती है इबादत में। अब इस्लाम के अंदर ये तरीका बरसीसा वाला जायज नहीं, लेकिन उस वक्त तो जायज था, चले गए वो जंगल, जंगल में अकेला बैठ के इबादत कर रहा है, ये एक नई कतार खड़ी होती है उसके दरवाजे के सामने दुआ करवाने वालों, पाकिस्तान में जाके देखिए जो फरारी और शीजा प्रेजेंट के होते हैं खुद उम्र 40 साल 110 साल के बंगाली बाबा बैठे हुए हैं, तो वो उनके यहाँ कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती है क्यों, और बरसीसा पे जीनियर किस्म का आदमी था, लेकिन जब वहां पहुंचे बहन को ले और कहा कि ये हमारा मसाला, उसने कहा कि भाई इस वक्त फर्स्ट कम फर्स्ट बहुत सारे दुआ करने वाले, जो बारी आएगी मैं तुम्हारी बहन के लिए दुआ करूं, मगर इतना भाई परेशान थे कहा कि हो सकता है तुम भूल जाओ, अपनी बहन को यही छोड़े जा रहे हैं, जब ये दुआ करो जब ये ठीक हो जाएगी हमें बता दे, उसने कहा ठीक है डाल दो किसी कोने में, बादल खाना मेरा बहुत बड़ा, इमाम ने फरमाया देखो, लेकिन मेरा वो जुमला है जिसे मैं मॉडर्न लैंग्वेज में इस तरह कहता हूं कि आज के बड़े बड़े शराबी ये जुमला कहते हैं कि हमें ऑरेंज जूस ने मारा है, वो जो मेरा एक जुमला बहुत मशहूर है मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, आप कहेंगे मौलाना सिर्फ रिपीट कर, शैतान को मौका मत दो किसी हलाल जरिए से भी कि तुम्हारे घर में कदम रहे, शैतान को एक जगह चाहता है तुम्हारे घर में एंटर होने, ग्रीक माइथोलॉजी में एक वाकया है ना कि किसी बच्चे के बारे में था कि वो मार दिया जाएगा, तो उसकी मां ने उसको पांव की एड़ी से पकड़कर वो दरिया में खोदा दिया जिससे हमेशा की जिंदगी मिलती है, लेकिन जहां से पकड़ा था वही जगह पानी नहीं पहुंचा, दुश्मन ने वहीं पे तीर मारा, वो पूरा आपने सुना होगा, तो ये जो है वो इस्लाम का तसव्वुर है, शैतान को मौका मत दो, तुम ये कह रहे हो मौलाना जो पूरा इस्लाम दाढ़ी है, पूरा इस्लाम दाढ़ी नहीं है, शैतान के दाखिल होने के लिए गुना करती, तुम ये कह रहे हो कि क्या पूरा इस्लाम हिजाब है, नहीं हिजाब पूरा इस्लाम नफ़्स, शैतान की एंट्री के लिए तुमने एक रास्ता खोल दिया, तो पाकिस्तान में फ्लड आ रहे हैं अल्लाह मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को मुसीबतों से बचा, जो बड़े बड़े बंद टूट रहे पहले छोटा सा होल बनता और फिर वो बड़ा होकर तबाही लेके आता, गुना इसी तरह से है, इमाम ने कहा इतना इबादत गुजार क्या इसलिए इस तरफ तवज्जो ना दी, कि एक नामहरम लड़की का है, बीमार सही इसके घर में अकेले कैसे? वो तो अपने तकवे और इबादत में खोया हुआ है कि मेरा क्या पहलू, मर्द कौन है, औरत कौन है, अकेला कौन है, मैं तो अपनी इबादत में लगा। शैतान को मौका मिला, कोने में पड़ी, मगर है तो ये इंसान ना, फरिश्ता तो है नहीं। एक बार किसी मौके पर निगाह पड़ी और निगाह पड़ी तो बस फिर हैरान हो। इमाम फरमाते गलती वहां से की, पहले ही मरहले में कहना चाहिए नहीं नहीं ये नामहरम लड़की मेरे घर में रहेगी, मैं बर्दाश्त नहीं करता, ले जाओ, मैं इसके लिए दुआ करता हूं। वहां तो यही था, मैं कौन सा हराम कर रहा हूं। आज भी यही मिस कैडरी के नाम के लोग जमा होते, यही तो कहते ना, हम कौन सा हराम काम कर रहे हैं, वो भी पूरे हिजाब के साथ, हम भी पूरे हिजाब के साथ। आप मौका दे रहे हैं शैतान को, इसके लिए रास्ता खोल रहे हैं, क्या थोड़ा सा दरवाजा खोले, कोई धक्का देना तो शैतान का काम है, पूरा दरवाजा ऐसा खोलेगा कि आपके पीछे खड़े ना कलाबाजी खा के गिर पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत सारी लंबी लंबी बातें हो रही है मुख्तसर। अब जब वहां रहा हजरत नूह से शैतान ने यही तो कहा था कि या नबी खुदा, जब कोई मोमिन किसी तरह मेरे काबू में नहीं आता, नामहरम के साथ उसको जमा कर देता कुरान पढ़ने के नाम पर। उस जमाने में कुरान को नहीं होगा, शरीफा नूह हो वे इसको कुरान पढ़ने, कुरान की तालीम दी जा रही। क्यों आयतुल्लाह सिस्तानी ने चैटिंग को भी हराम करार दिया? पहले लिखा कि शरण जायज है, फिर क्यों लिखा आगे मगर आजकल की संदाज से होती है, इसके लिए मैं इसको हराम करार देता हूं। ये सारी चीजें सोचने की, पर अभी उसने हलाल काम किया। नामहरम औरत घर के कोने में पड़ी है, बजाहिर हलाल है, लेकिन ये वो हलाल है जो 50 हराम का दरिया बनता, अगला हराम हो। अभी भी मौका, पहले हराम उसे हो गया थी, पहले हराम औरत मौका कर दे, बच्ची को इसके भाइयों के आप पहुंचा दे, अपने आप को सलवार के लिए पेश कर दे, मगर कौन इसके लिए तैयार हो? जब एक दाढ़ी और एक हिजाब के लिए लोग तैयार नहीं, कुछ अर्से के बाद प्रेगनेंसी जाहिर हो, अब घबरा, मेरी इतनी इज्जत, मेरा इतना एहतराम, मेरा इतना बड़ा स्टेटस, कैसे बचाऊं अपने स्टेटस को? एक्सक्यूज न लाता, फौरन तौबा कर लेता। और इसकी तौबा ये नहीं है कि आपने कान खींचे और कहा तौबा तौबा, इसकी तौबा वो है जो मैं भी बता चुका हूं, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उस बच्ची का गला घुटा, उसे कत्ल किया, जमीन खोद के उसे दफन कर दिया। एक छोटा सा हलाल रास्ता इसने शैतान को दिया, ना मैरम के साथ जमा हुआ तो फिर बिना हुआ, बिना हुआ तो फिर कत्ल। अब उधर बहुत दिन गुजर के भाइयों को खबर नहीं हुआ, अपनी बहन की खबर गिरी नहीं, भरोसा तो बहुत था कि इतने मुस्तकिल और परहेजगार के घर छोड़ के गए, इस्लामिक फरेशों को मानते ही नहीं, तभी औरतों को मौका मिलता है, मौलाना आधी लोगों के लिए खराब है, खुला से हमारा तो बहुत अच्छा रिश्ता भाई जैसा, आप गंदे हैं तो गंदा मसाला लेके आ रहे हैं, आप गंदा मसाला कहलाता है, गंदा मसाला, आप खुद गंदे हैं ना तो बात भी ऐसी गंदी कर रहे। हमारे अकेले बड़े पाकिदा भाइयों जैसे ताल्लुकात, इस ओवर कॉन्फिडेंस को इस्लाम मानता ही नहीं। भाइयों को इतना कॉन्फिडेंस, भाइयों की भी गलती, क्यों एक नामहरम के पास छोड़ के गए? चाहे वो मर्जी हो के मुस्तहिद हो के मुस्तफी हो के परहेजगार हो के आलिम हो, आए अब क्या कहें, आगे फर्जी था। अच्छा क्या क्यों आए हो? कब हमारी बहन वो, मैंने तो उसके हाथ में दुआ की थी, वो ठीक हो गई थी, कहा मैं रास्ता जानती हूं, चली गई। बड़ा जीव जुमला भी इमाम ने यहां पर बताया, जिना इसने किया, फकर इसने किया, इमाम फरमाते देखो ये गुनाह में बढ़ता जा रहा, इसने झूठ भी बोल दिया, इमाम ने इसको फसल से बड़ा गुनाह करार दिया, झूठ को जो सुबह शाम मैं तो बोलता हूं और बहुत सारे लोग बोलते हैं, और इमाम कह रहे हैं इतना बड़ा गुनाह है, पैगंबर की हदीस नहीं सुनी, किसी ने जाके रसूल से पूछा था या रसूलल्लाह मोमिन जिना कर सकता है? सोचा था हो सकता है, फसल कर सकता है? हो सकता है, झूठ बोल सकता था? हरगिज नहीं, मोमिन और झूठ कभी जमा नहीं हो सकते। और याद इमाम यही बात कह रहे, ये तो आम जिंदगी के मजाक से झूठ, और जब वो वाले झूठ बन जाए, इंश्योरेंस में झूठा तुले, दवा लेने के लिए झूठे दावे, यहां पे शायद नहीं है लेकिन यूरोप के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम करने के लिए झूठी बातें, बीवी को कह दिया तलाक दे चुका हूं, वो अलग है हम अलग है, चुनाचे जो दोनों बेनिफिट मिलेंगे, तो आम से झूठ की इमाम बात कर रहे हैं कि मोमिन से मुमकिन नहीं, फसल से बड़ा गुना। इमाम ने कहा देखो एक स्टेज और आगे बढ़ा, कह दिया झूठ कि वो तो चली गई, भाइयों को इतना यकीन था कहा चली गई, इतना मुस्तफी आदमी कह रहे बरसिंसा मुस्तजा को डाला, वो वापिस तो वाकया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं उसमें चिंगारी दार की जमालो खड़ी है, पता नहीं चाहिए सज्जन आप क्या करेंगे। शैतान ये सारा इसमें कर ही नहीं रहा है कि स्टोरी यहां पर खत्म हो जाए। वो भाइयों के पास गए, कहा कि अरे किसके चक्कर में आ गए, तुम्हारी बहन कहीं गई वही नहीं, उसने फसल करके अपने घर में दफन किया है, मैं बताता हूं फुला जगह जमीन खोदो। एक मरतबा बत्तीसा इतना पावरफुल आदमी है अपने तकड़े की वजह से, भाइयों की हिम्मत नहीं पड़ी बादशाह के पास से, कहा कि ये कैसे हमारी बहन माधव यकीन नहीं आया, बत्तीसा जैसे आदमी के बारे में ऐसी बात कह रहे हो, खबरदार दोबारा न कहना मतलब सदर दूंगा। कहा कि नहीं नहीं हमें पूरा यकीन न चले, एक बात चेक कर ली, जमीन खोदना तो गलत हो तो हमें खोदना भी, इतना यकीन था बादशाह को, लेकिन ताल्लुका कितने थे इन लोगों से, ये इतनी पावरफुल फैमिली थी। आए मैं बात बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, इसलिए एक घंटा हो गया, जल्दी से वहां जो शैतान ने कोई जगह बताई, शैतान ने ही बस्तीसा से फसल करवाया, शैतान ने उसे खबर बनवाई, शैतान ने ही आकर भाइयों को बताया कहां रह पाओ। खबर खोला, खबर को खोला, खबर तो नहीं थी जमीन बराबर, तो वहां अंडर टोली निकल, वो पाकिस्तान में कितने ही पीओ के मजार ऐसे खोलेंगे तो अंदर से गला निकलेगा, हमारे सामने ऐसे वाक आते हो, क्योंकि यहां तो निकल आई ना, जो कि बिल्कुल झीनी है बात। और आप क्यों ये देखा, देखिए आदमी को जिसपे बड़ा कॉन्फिडेंस, जब उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो फिर इतना ही उसके अगेंस्ट हो जाता। अब बादशाह के कहे तो गलत की इंतजार है, बस्तीसा में तुम्हारा इतना एहतराम दो और तुमने इतना बदतरीन गुनाह किया, चुना क्या तुम्हें एक ही सजा मिलेगी, तुम्हें फांसी में चढ़ाया जाए। यहां से सूरह हज़्र इस वाकये में एंटर हुआ, बस सीधा को गिरफ्तार करके ले चले, ये इतना इज्जत वाला हो, गुनाह पर गुनाह पर गुनाह आज इतना दलील हो रहा है पब्लिक के सामने, अल्लाह के नजदीक 25 साल कुछ नहीं होते, ये तो हर 20 दिन की कहानी हो या 20 महीने की कहानी हो। सद्दाम को आपने देखा कि आखिर कितनी जिल्लत की मौत इस दुनिया में उसको मिली, 12 लोग गिरफ्तार करके ले चले, आज जब फांसी में चढ़ाया गया उसको, अब जान जा रहे, शैतान उसको नजर आ गया मजमे के अंदर, और शैतान करीब आके कहता अभी भी मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, ऐसी शर्त है कि मेरी खुदाई तुम्हारी। डूबने वाला तो तिनके को भी सहारा समझता, ये तो तिनका भी नहीं है शैतान है, फिर भी कुछ पावर अल्लाह ने उसको ऐसी दे दी है, घबरा देगा मेरी जान बचा ले, मैं तेरी खुदाई को मानता हूं भाई, ये कहा और वो लीवर दबा और एक बार पार्टी का वो तख्ता नीचे से हटा और ये मरा और दुनिया में इशारत से गए, तब कुरान की आयत है इस हाल अली इंसान खुद, याद करो जब शैतान एक आदमी पर सीधा से कह रहा था कुफर इख्तियार करो, फलम्मा सफरा जब बत्तीसा ने कुफर इख्तियार कर लिया तो शैतान ये कहता हुआ भागा इन्नी बड़ी और मिलता मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, तो मैं तो खुद तो अल्लाह से करता हूं तुम्हें कैसे बचाऊं। इमाम ने कहा लेकिन सुनो कहानी शुरू कहां से हुई, एक नामहरम औरत तन्हाई की जगह में अपनी इबादत गाह में आने की इजाजत है, इबादत गाह बेडरूम नहीं, इबादत गाह जो बजा है बहुत ज्यादा कोई सच्ची मसाले पढ़ ले झू झू करके कहेगा ये तो मौलाना हलाल अमल, मगर कैसा हलाल है कि फिर बिना करवाया, फिर उसके बाद फसल करवाया, उसके बाद झूठ बनवाया, इसके बाद कुफर करवाया, और सिर्फ इसलिए कि किसी लम्हे पर ये रुककर अपने गुनाह को मानने को तैयार नहीं, ये रुककर तौबा करने को तैयार नहीं। गुना मोमिन ही से होंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे गुनाह करने के लिए, लेकिन झूठे एक्सक्यूज बिला वजह अपनी बात कैसे, अव्वल तो गुना को कम से कम इतना मानो जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, जब ये मानोगे तो आगे इस इलाका चांस रहेगा, गलती को गलती ही नहीं मानो। अगर एक आदमी पानी पी रहा हो उसको गुना नहीं समझता है तो कभी पानी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पानी हलाल पी, वो समझ रहा है कि बेहिजाब में घूम रही है हलाल काम कर रही है, ये मौलवियों का बनाया हुआ मतलब छोटा गुना अगर उसी वक्त उसको ना रोका जाए तो इतने बड़े फ्लड और सैलाब में तब्दील होता है, जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं गुनाहों का एक सैलाब आता, पाकिस्तान में तो पानी का सैलाब आया, हमारे और आपके घरों में गुनाहों का सैलाब आया, और माह मुबारक रमजान इसीलिए रुक जाओ समझ जाओ, जैसे ही गुनाह हो जाए आपकी गलती मान लो और तौबा करो, फिर देखो अच्छा तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह को किस तरह से माफ करते लाइफ हमें बदल क्या है, इसलिए गुनाह हो रहे जा रहे, हमें पता ही